पॉर्न वाइफ सेक्स कहानी में पढ़ें कि पराए मर्द से चुदकर एक नवविवाहिता ने अपने पति को अपनी हरकत बता दी और साथ ही उस पराए मर्द की बीवी को अपने पति के लंड के नीचे लाने को प्रबंध भी कर लिया। मेनका की तपस्या भंग हुई। कहानी के दूसरे भाग में अब तक आपने पढ़ा कि आदित्य की पत्नी दीपाली उसकी अनुपस्थिति में जरा सी लापरवाही के कारण मकान मालिक वैभव की ओर आकर्षित होती है और अपनी मर्जी से नए आनंद की तलाश में उसके पास चुदने पहुंच जाती है। एक दूसरे के शरीर, मन और आत्मा को तृप्त करने के बाद उन दोनों के द्वारा आदित्य और मेनका को भी मस्ती के नए रिश्तों में सम्मिलित करके आनंद के नए शिखरों को छूने का निर्णय लिया जाता है। अब आगे, उसने वैभव को रोका, पलंग से उठी, कोल्ड क्रीम की शीशी से बहुत सारी कोल्ड क्रीम लेकर अपने बूब्स पर लगा दी और बिस्तर पर लेट गई। उसके बाद वैभव को अपने ऊपर आने का इशारा किया। दीपाली ने अपने दोनों बोबों और उंगलियों के बीच वैभव का लंड फंसा लिया था। जब लंड आगे की ओर जाता तो दीपाली जुबान हिला हिला कर लंड के सुपारे को सहलाती। इस दोहरे खेल के कारण वैभव मस्ती में झूम रहा था। कुछ ही देर की मस्ती भरी मेहनत के बाद वीर्य का तूफान लंड के अग्रभाग में इकट्ठा हो गया। वैभव के धक्कों में तेजी आ गई और उसकी आंखें बंद होने लगी। जैसे ही लंड की नसों को फड़काना शुरू किया, इसका संकेत दीपाली की उंगलियों को पहुंचा और उसने अपने होठों को भींच लिया। वैभव के मुंह से जोरों की आवाज़ निकली, आह। उसके बाद एकदम वेग से वीर्य की पिचकारी छूटी। कुछ कतरे दीपाली के चेहरे पर पड़े, कुछ उसके बूब्स पर। वैभव जब थोड़ा पीछे हटा तो अंतिम कुछ बूंदे पेट पर। दीपाली वीर्य स्नान से एक आनंद अनुभव कर रही थी। उसके चिकने बदन पर वीर्य की बूंदे ऐसी लग रही थी जैसे कमल के फूल पर ओस गिरी हो। उसका ये रूप विलक्षण था। ऐसे रूप की तो वैभव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद कमरे में वीर्य की मादक गंध फैल गई। वैभव और दीपाली दोनों बार बार छड़कर पूरी तरह तृप्त हो चुके थे, क्योंकि दीपाली को वीर्य स्नान के बाद अब नहाना ज़रूरी था। तो वैभव बोला, मैं भी चलता हूँ। दीपाली बोली, चलो, लेकिन कोई शरारत मत करना। वैभव ने कहा, नहीं करूँगा। दोनों बाथरूम गए, शार चलाया। पानी में भीग कर दीपाली का नग्न सौंदर्य भी निखर चुका था। ऐसे में भला वैभव के हाथ कैसे रुकते। वो दीपाली के स्तनों तक पहुंच ही चुके थे और उसको भी अच्छा लग रहा था। इसके पहले कि दोनों बहके, दीपाली ने वैभव को रोक दिया और कहा, मेरे प्रीतम, मैं जानती हूँ कि यदि तुम फिर से मूड में आ गए तो एक घंटे तक सोने नहीं दोगे। वैभव बोला, कामदेव की कृपा के तो पता नहीं, पर तुम्हारे मादक बदन और रसीली चूत की मेहरबानी ज़रूर हो गई है मुझ पर। फिर उसने कहा, विभू, कितना भी मस्का लगा लो, अब कुछ नहीं करने दूंगी। चरम सुख की प्राप्ति के बाद, दिमाग और नहाने के बाद दोनों के शरीर बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। थोड़ी देर में दोनों सुख भरी नींद में सो गए। सुबह जब दीपाली की नींद खुली तब पहले तो दीपाली को ऐसा लगा जैसे वो आदित्य की बाहों में है, पर धीरे धीरे उसे सब याद आ गया। वासना का तूफान निकल चुका था, इसलिए अब दीपाली पर लाज हावी होने लगी थी। उसकी नज़र वैभव के लंड पर पड़ी जो रात के आराम के बाद फिर फनफनाने लगा था। वैभव के चेहरे पर तृप्ति भरी मुस्कान थी। दीपाली के दिल में प्रेम उमड़ा। उसने झुककर वैभव के लंड को चूमा, फिर उसको मुंह में लेकर उस पर गोल गोल जुबान घूमने लगी। वैभव की नींद खुल चुकी थी। उसने दीपाली को लंड चूसते देखा तो गदगद हो गया। उसने दीपाली को पकड़ के घुमाया और अपना मुंह उसकी चूत पर लगा दिया। फिर शुरू हुआ 69 का मज़ेदार दौर। उसके बाद दोनों के शरीर में काम वासना की लपटें उठने लगी। दोनों की इच्छा इस बार मुख मैथुन से सुख पाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुख देना था। करीब 10 मिनट तक ये खेल चला। फिर दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों का चरम उमड़ने घुमड़ने लगा। इधर दीपाली की चूत फड़कना प्रारंभ हुई, उधर वैभव के लंड से वीर्य का झरना फूट पड़ा। इस बार दीपाली ने वैभव के लंड को मुंह से बाहर नहीं निकाला, बल्कि वीर्य के हर कतरे को बड़े प्यार से गटकती रही। वैभव और दीपाली दोनों की आंखें चरम सुख के इन क्षणों में बंद थी और सांसें धोखने की तरह चल रही थी। जब दोनों सामान्य हुए तो दीपाली की आंखों में मस्ती भरी चमक और होठों पर मीठी मुस्कान थी। वैभव के दिमाग में ये स्थायी रूप से अंकित हो चुका था। वैभव ने कहा, दीपाली, अभी तो तूने गजब ही कर दिया। दीपाली ने कहा, तुम्हारे साथ ये मेरी प्रेम क्रीड़ा मेरे भी लिए मधुर स्मृतियों से कम नहीं है। और आगे बोली, अच्छा विभु, अब मैं चलती हूँ। आदित्य कभी भी आ सकता है और वो भी आते ही ठोकेगा। दीपाली ने कहा, आज भी विश्वामित्र और मेनका का मिलन हो जाना चाहिए। वैभव ने कहा, क्यों नहीं, उनकी मिलन यामिनी के बाद हम चारों के बीच में कामुकता के नए संबंध बन जाएंगे। वैभव को पहले लग रहा था कि कहीं सुबह दीपाली किसी अपराध बोध से ग्रस्त ना हो, आदित्य के साथ बेवफाई का दंश उसे अंदर ही अंदर लज्जित ना करे, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। वह तो और अधिक कामुक दिखाई दे रही थी। सुबह जिस तरीके से उसने वीर्य की अंतिम बूंद तक अपने मुंह में निचोड़ी है, वो वैभव के लिए आनंद से कम नहीं थी। दीपाली अपने कमरे में आने के बाद, फ्रेश होने के बाद नहाने की तैयारी कर रही थी कि आदित्य आ गया। तब दीपाली ने चाय बनाई और उससे पूछा, पहले नाश्ता करोगे या नहाओगे? उसने कहा, सबसे पहले तो तुझे चोदूंगा, और उसको लेकर पलंग पर पड़ गया। दीपाली उसको रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उसके सिर पर वासना का भूत सवार था। उसने नाइटी खोलकर फेंकी और पेंटी नीचे खींच दी। उसने देखा कि दीपाली की चूत एकदम चिकनी थी, जबकि वो घना जंगल छोड़कर गया था। फटाफट दीपाली की चूत पर अपने होंठ रखकर उन्हें लपालप चाटने लगा। उसे चूत रस में हल्का सा वीर्य का स्वाद भी आया। उसके बाद वो आगे बढ़ा, दीपाली के स्तन चूसे, फिर होठों का रस लगाने लगा। उसने दीपाली के मुंह से भी वीर्य की गंध सी महसूस हुई और पूछा, दीपाली क्या बात है यार, मेरी जुबान तो तेरी चूत और मुँह से वीर्य जैसा एहसास हो रहा है। दीपाली बोली, बताती हूँ, ज़रा सब्र तो करो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेनका कैसी लगती है। इस पर आदित्य ने कहा, रे यार पूछ मत, मेनका ने तो मेरी तपस्या भंग कर रखी है, मैं तो कब से उसे चोदना चाहता हूँ, पर ज़रा लाइन तो दे। दीपाली बोली, बस तो फिर तुम आज रात मेनका के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करो। आदित्य चौंक गया, उसने पूछा, ऐसे कैसे? उसके बाद आदित्य ने दीपू की चुदाई शुरू कर दी, और दीपू ने कल सुबह से लेकर आज सुबह तक की सारी घटनाएं पूरा रस लेकर उसे सुना दी। आदित्य भी सब कुछ सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक ही दिन में वैभव और दीपाली ने किस्मत से मिले इस मौके का कितना फ़ायदा उठाया है। दीपू सोच रही थी कि कल दो बार ओरल से और एक बार चुदाई से झड़ी हूँ, तो इस बार चरम सुख मिलना कठिन रहेगा, लेकिन कुछ तो दोनों के बीच बातों ने और कुछ आदित्य के चढ़े हुए जोश ने ऐसा असर दिया कि दीपाली का चरम उठने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बहुत मज़ा आ रहा है आदि, आदि जोत लो मुझे, ज़ोर से जोत। कुछ ही देर में दीपाली की आवाज़ सुनाई दी, ओ माँ, ओ नो, मर गई। दीपाली इतना ज़ोर से बोल रही थी कि उसकी आवाज़ें नीचे वैभव तक पहुंच रही थी। उसकी इच्छा तो हुई कि अभी ऊपर जाकर वह भी दीपाली की चूत में लन डाल दे, लेकिन शाम को मेनका आने वाली थी और आते ही उसकी चुदाई भी करनी थी। इतना तो वैभव समझ गया था कि दीपाली ने एक बार फिर ज़बरदस्त ऑर्गेज़म मिल गया है। 4 बजे दीपाली की आवाज़ आई, विभू ऊपर आ जाओ, चाय तैयार है। वैभव के होठों पर मुस्कान थी। दीपाली ने भी उसी की तरह द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया था। ऊपर जाते ही वैभव का सामना आदित्य से हुआ, जो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मिस्टर वैभव, तुम्हारे मकान में रहते तो किराए देते हैं, तुमको कल मौका क्या मिला? तुमने तो मेरी दीपू को पेल ही दिया। वैभव कुछ समझो और जवाब दे उससे पहले दीपावली जोर से हंसने लगी और आदित्य भी। वैभव खिसका के रह गया। अगले ही पल उसे पूरा माजरा समझ आ गया, फिर हंसी मजाक चलने लगा। एक ही दिन में दीपाली पूरी तरह बदल चुकी थी। वह दोनों बेशर्म मर्दों के बीच निर्लज होकर अश्लील चुटकुलों के मज़े ले रही थी। कुछ समय बाद वैभव ने कहा, मेनका आने वाली है, मैं चलता हूँ। शाम को मेनका पहुँची। स्टेशन से घर आते ही वैभव ने उसको बाहों में खींच लिया और बेडरूम की ओर चल दिया। वहाँ जाकर उसने मेनका के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। मेनका चकित थी, उसने पूछा, 2 दिन ही तो हुए हैं, ऐसा भूत क्यों चढ़ा है चुदाई का? वैभव ने कहा, बस पूछ मत और हर एक लम्हे का मज़ा लेने की कोशिश कर। वैभव का लंड तो सुबह ही दीपाली ने निचोड़ा था, इसलिए उसके तो चोदने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन वो मेनका को झड़ाना चाहता था। मेनका ने भी वैभव की बात मानकर अपना सारा ध्यान उसकी चूत पर केंद्रित कर लिया। जहाँ वैभव अपने होठ और जुबान से उसकी चूत की तरंगित कर रहा था, कुछ ही पलों में मेनका के मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। 10 मिनट के घमासान चूचूशन से मेनका ने चरम सुख वाले गहन तनाव के उपरांत राहत की सांस ली और मीठी नींद सो गई। वैभव भी उसके साथ सो गया। जब दोनों उठे तो शाम ढल चुकी थी। वैभव उठकर शेविंग किट ले आया, नंगी पड़ी मेनका की जूत पर उगी झाटों को साफ करके उसको चिकना कर दिया। उसके बाद मेनका और वैभव दोनों चहलबाजी करते हुए नहाए। नहाने के बाद वैभव ने पलंग को गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया। वैभव ने कहा, आज तेरे लिए स्वर को जमीन पर उतारना है। मेनका बोली, सिर्फ मेरे लिए? वैभव ने कहा, हाँ यही समझ लो। रात का डिनर ऑर्डर कर दिया था। आदित्य और दीपाली भी साथ थे। खाना खाते समय सब कुछ सामान्य था। मेनका को रत्ती भर भी भनक नहीं लगी कि उसके पीछे क्या कुछ घट चुका है। खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा चारों बातें करते रहे। उसके बाद आदित्य और दीपाली गुड नाइट कहकर ऊपर चले गए। मेनका भी मस्ती के मूड में आ चुकी थी। वैभव से पहले बेडरूम में चली गई। वैभव जब कमरे में गया तो देखा कि बिना ब्रा पैंटी के पारदर्शी नाइटी में मेनका की जवानी छलक रही है। वैभव बोला, ये हुई ना बात। उसके बाद वैभव ने अपनी जेब से काली पट्टी निकाली और मेनका की आंखों पर बांध दी। मेनका अब इंतजार कर रही थी कब उसकी नाइटी उतरेगी। वैभव ने नाइटी की डोर खींची। नाइटी के गिरते ही मेनका नंगी हो गई। उसके बाद मेनका के कूलों के बीच में लंड को टिकाकर दोनों हाथों से मेनका की मक्खन के टीलों को सहलाने लगा, उसके निप्पलों को चूसने लगा। मेनका चुदने को आतुर होने लगी। उसने पीछे हाथ ले जाकर वैभव के कड़क लंड को पकड़ लिया और बोली, आज चिकना कर रखा है, पलंग पर गुलाब है, मेरी आंखों पर काली पट्टी, इरादा क्या है? वैभव ने कहा, आज मिलने वाले आनंद के सिवा तू कुछ मत सोच। दोनों के मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। मेनका की चूत से दुनिया का सबसे स्वादिष्ट नशीला पदार्थ बह रहा था। वैभव ने मेनका की एक न सुनी और फिर से पिल पड़ा उसकी चिकनी चूत को चाटने लगा। मेनका ने कहा, ऐसा क्या चस्का लगा है, शाम को तो चाटी थी। कई बार सोचती हूँ कि ऐसे में कोई बूब्स चूसने वाला भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इतने में उसके दोनों स्तनों की निप्पलों को दो जोड़ी होठ चूसने में जुट गए। मेनका ने चौंक कर आँखों की पट्टी खींच ली। उसने देखा तो उसकी चूत वैभव नहीं बल्कि आदित्य चाट रहा था और उसके स्तनों को दीपाली और विभू दोनों चूस रहे थे। वो देखकर अवाक रह गई। वह सोच रही थी, इतना सब कुछ कैसे घटित हो गया। मेनका का आवेग जब शांत हुआ तब उसे अपनी स्थिति का ध्यान आया। वह एक पराए जोड़े और पति के सामने नंगी पड़ी हुई थी। उसे लग रहा था, इन सब से मैं नजरें कैसे मिलाऊंगी। जब वैभव ने देखा कि मेनका आंखें बंद करके पड़ी है तो उसने मेनका को छेड़ा और कहा, उठो मेनका, तुमने कलयुग विश्वामित्र की तपस्या भंग करके अपनी एक पुरानी ख्वाहिश पूरी कर ली है। ये सुनकर मेनका ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं, कलयुग विश्वामित्र ने तुम्हारे साथ मिलकर धोखे से मेनका की तपस्या भंग की है। और ये बोलकर सब हंस पड़े। एक दिन पहले ये चारों शराफत के पुतले थे, लेकिन अब बेशर्मी के प्रतीक बन चुके थे। मेनका उठी और सबके लिए कॉफ़ी लाई। उसके बाद मेनका ने पूछा, यार अब तो तुम लोग बता दो, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? इस पर वैभव और दीपाली ने अभी तक का पूरा किस्सा सुना दिया। इतनी कामुक घटनाओं से भरे किस्से को सुनते सुनते बेख्याली में मेनका का हाथ अपनी चूत पर चला गया। वह फिर से रिस रही थी। आज दो बार औरल से झड़ चुकी थी, लेकिन औरत को तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक उसकी चूत में लंड न चला जाए। ये तो निश्चित था कि उसको वैभव के सामने आदित्य के नए लंड से चुदना था, जिसने अभी अभी उसकी चूत चूस के दीपाली और वैभव के सहयोग से उसे शानदार ऑर्गेज्म दिया था। अभी कमरे में चार जवान जिस्म कामुकता और मस्ती से लबालब भरे थे। कमरे में गुलाबों की महक थी। ऐसे माहौल में बहकते हुए मेनका ने कहा, आइए आदित्य मित्र जी, तुमने मेनका की तपस्या तो भंग कर दी है और अब उसके साथ संभोग का भोग भी ले लो। आदित्य आगे बढ़ा और मेनका को बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। मेनका बेझिझक घुटनों के बल बैठ गई। आदित्य मेनका के चेहरे को अपने लंड से सहलाने लगा। लंड जब उसके होठों के समीप आया तो उसने मेनका के अध खुले होठों के बीच रखकर हल्का सा जोर लगा दिया। मेनका ने आदित्य के लंड को मुंह में ले लिया और किसी स्वादिष्ट आइसक्रीम की तरह उसको चूसने लगी। हर मर्द को औरत इस पोज में सबसे सुंदर लगती है। दीपाली और वैभव मेनका को आदित्य का लंड चूसते देखकर मुस्कुरा रहे थे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि एकाधिकार की भावना ही झगड़े की जड़ है। यदि वह नहीं हो तो प्रेम बढ़ जाता है। यदि पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे को नियंत्रण मुक्त कर दें तो जीवन अधिक आनंदित हो जाएगा। ऐसे में दीपाली और वैभव के सामने आदित्य का लंड चूसना मेनका की उत्तेजना बढ़ा रहा था। मेनका के चूसने से आदित्य का लंड बहुत कड़क हो चुका था, तो आदित्य ने मेनका को घोड़ी बनाया और उसके चूतड़ों को तड़ा तड़ करके लाल कर दिया। और फिर आदित्य ने मुख लार से सने चिकने लंड को मेनका की चूत के बीचों बीच रखकर जोर के झटके मारने शुरू कर दिए। इस आसन में बस एक ही समस्या है, चूतने वाला औरत के स्तन नहीं चूस सकता। वैभव और दीपाली ने मेनका के झूलते हुए स्तनों को देखा तो दोनों उनको चूमने लगी। पीछे से आदित्य के धक्कों के कारण मेनका की चूत में मस्ती का चक्रवात उठने लगा। मेनका चूतते हुए यही सोच रही थी कि जीवन का सही मजा तभी है जब हर औरत वैभव और आदित्य जैसे हों। आदित्य और मेनका की लाई चुदाई देख दीपाली और वैभव की वासना भी भड़क उठी थी। वैभव ने दीपाली को इशारा किया। दीपाली की चूत में भी गुदगुदी हो रही थी। वो खुशी खुशी मेनका की तरह घोड़ी बन गई। अब देखिए कैसा मनोहरी दृश्य था। आदित्य और वैभव पूरी मस्ती में एक दूसरे की पत्नियों को चूत रहे थे। वैभव ने कहा, दीपाली शाम को आदि से चुदवाते समय जैसी गालियाँ अभी भी देना। दीपाली ने कहा, तुमको सुनाने के लिए ही तो बोल रही थी। ऐसे उत्तेजित वातावरण में दोनों औरतों को चरम सुख में ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। 10 मिनट ही हुए थे, मेनका और दीपाली दोनों की सरसराहट बढ़ गई। दोनों चिल्लाए, अब रुकना मत कमीनो, अब रुकना मत, जोर से चोद लो, रगड़ो जोर से। आदित्य और वैभव के धक्के लगाने की गति तेज हो गई। मेनका और दीपाली की चूतें एकदम जैसे ज्वालामुखी फट गया। दोनों की चूतें जोर जोर से फड़क रही थी और उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे गर्म लावा उनकी चूत से बाहर आ रहा हो। दोनों मर्दों को चूत चोते हुए उन दोनों की गांड ललचा रही थी, तो दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ तय किया और एक साथ लंड को निकालकर उनकी गांड के संकरे छेद में दम लगा के घुसेड़ दिया। इससे पहले ही मेनका और दीपाली के मुंह से गालियां निकलती, आदित्य और वैभव ने एक साथ कहा, हमारी दोनों कामुक बीवियों को विवाह की वर्षगांठ पर बधाई हो। आदित्य बोला, आज रात की सारी मस्ती अधूरी रह जाती यदि तुम दोनों की गांड ना मारी होती। दीपाली और मेनका भी एक दूसरे के पतियों की शरारत पर मुस्कुराने लगी। वे दोनों तो परपुरुष आनंद में यह बात भूल ही गई थी रात के 12 बज गए हैं और आज उन चारों की विवाह की वर्षगांठ है। एक दिन पहले तक तो पतिव्रता नारियां आज गैर मर्द के साथ काम वासना के खेल खेल रही थी। वैभव मेनका की तो फिर भी ये 5वीं थी, किंतु आदित्य और दीपाली की तो ये पहली वर्षगांठ थी। इस वर्षगांठ में दोनों जोड़ों ने पहली बार नए स्वाद का मजा लिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में वैभव और आदित्य दोनों को ही मेनका और दीपाली के चरित्र में कुछ भी घटा हुआ महसूस नहीं हुआ। इनके उलट दोनों के व्यवहार में अधिक प्रेम और अधिक मस्ती और अधिक जोश आने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।